Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
भारत और रूस के बीच सहयोग को बढ़ाने को लेकर प्रयास लगातार जारी हैं। गुरुवार को रूसी उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और आपसी हितों के विषयों पर चर्चा की। इसके पहले नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की तारीफ की। रूस इस मेले का साझेदार देश है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को टाइम टेस्टेड पार्टनर बताया।
इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं।
अस्थिर वैश्विक माहौल में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है, और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत।
सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को प्रभावी बता रही है। चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुंबई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निवेशकों का भरोसा भारत में होने की बात कही।
आज भारत की अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का अटूट भरोसा है, उपभोक्ताओं में ऊर्जा है और समावेशी विकास का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।
और अब चर्चा चुनावी राज्य बिहार की, जहां अगले कुछ हफ्तों में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। वे चंपारण इलाके के बेतिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य में सक्रियता बढ़ा दी है। प्रियंका गांधी आज चंपारण इलाके के मोतिहारी में रैली करने वाली हैं। इसके पहले वे पटना में महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। इस बारे में बताते हुए कांग्रेस नेता शकील अहमद खान कहते हैं,
एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की हैं, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर, पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न और ये जो बात मैंने गिनाया, जो स्कीम्स के साथ लगे हुए हैं महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान होंगी।
बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने का वादा करते हुए कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने कहा,
इस बिहार वासियों को यकीन दिलाना चाहती है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेके सरकार में पूरा मैनिफेस्टो, पूरे गारंटीज को इंप्लीमेंट हम करवाएंगे। बिहार को फिर से एक बार तरक्की के रास्ते पे हम डालेंगे। हिंदुस्तान में जिस तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहां जहां यहाँ कैसा डेवलपमेंट हुआ है, उसके लेवल पे हम बिहार को ले जाना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। ये टकराव दो सोच के बीच में है। एक सोच वो है जो आइडेंटिटीज को बरकरार रखना चाहती है, कल्चर्स को बरकरार रखना चाहती है, सर्वहारा समाज बनाना चाहती है, सबको बराबरी का हक देना चाहती है, और दूसरी तरफ वो है जो कुछ लोगों का दमन के सहारे सरकारें चलाना चाहती है।
इधर सत्ताधारी एनडीए भी महिला वोटरों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर किया जा रहा है। लद्दाख में हुई हिंसा के लिए सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और इसे छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। यह आंदोलन बुधवार को हिंसक हो उठा, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इसको लेकर उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है। इधर इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा ने आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती कहती हैं,
जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई, वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग, ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है। तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी ने किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। तो कांग्रेस के पास इतना सपोर्ट होता तो फिर बात कुछ और होती, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक स्पॉन्टेनियस है, वहाँ पर लोगों का जज्बा है, लोगों की आइडेंटिटी पे लगता है हमारे अटैक हो रहा है, हमारे जॉब्स पे अटैक हो रहा है, हमारी जमीन पे अटैक हो रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं।
हिंसा के बाद लेह और कारगिल में हालात तनावपूर्ण पर नियंत्रण में हैं। लेह में स्कूल कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस लाइसेंस के रद्द होने के बाद उनका संगठन विदेशी आर्थिक अनुदान स्वीकार नहीं कर पाएगा। उनके संगठन को मिले आर्थिक अनुदान को लेकर केंद्रीय एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।